ओम शांति। ईसा के लगभग 570 वर्ष बाद राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई भर्तरी उज्जैन के शासक थे और उज्जैन पर उनका साम्राज्य था। एक ब्राह्मण तपस्या करता है, देवताओं को प्रसन्न करता है, या फिर कुछ कहानियों में लिखा है कल्पवृक्ष उसे एक फल देता है और वह फल चमत्कारिक फल है। जो भी उस फल को खाएगा चीर यौवन को प्राप्त होगा। तो वो ब्राह्मण सोचता है, मैं इस फल का क्या करूं, अच्छा होगा कि मैं देश के राजा को ये फल दे दूं। और वो राजा भर्तरी के पास आता है और वो फल राजा भर्तरी को दे देता है। राजा चिरायु हो जाए। भर्तरी की एक पत्नी थी पिंगला, जिससे उसका अत्यधिक मोह और प्रेम था। राजा सोचता है इस फल को अच्छा होगा कि मैं अपनी पत्नी को दे दूं। अगर मैं खा लूं तो मेरे सामने उसकी मृत्यु मैं देख नहीं सकूंगा, अच्छा होगा कि वो चिरायु हो जाए, चिर यौवन को प्राप्त हो जाए। और राजा अपनी पत्नी को बुलाता है और उस पिंगला को वो फल दे देता है और फल की विशेषता भी बताता है। राजा की जो पत्नी है पिंगला, पर उसको प्रेम है नगर के कोतवाल से। वो उस कोतवाल को बुलाती है और कहती है, ये फल चमत्कारिक है, मुझे प्राप्त हुआ है, परंतु मुझे तुम बहुत प्रिय हो, इसलिए फल तुम खा लो। कोतवाल वो फल लेता है और सोचता है, मुझे प्रेम का नाटक करना पड़ता है रानी के सामने, बाकी प्रेम मेरा तो नर्तकी से है, और जो उस देश की राज नर्तकी है वो कोतवाल उससे प्यार करता है। और वो नर्तकी को बुलाता है और उसको वो फल देता है और कहता है, इसे तुम खाओ, ये चमत्कारिक फल है, इटर्नल यूथ इससे प्राप्त होता है। वो नर्तकी उस फल को लेती और सोचती है, मैं इस फल को क्या करूं खा के, ये अच्छा होगा कि इस देश के राजा को ये फल दिया जाए। और वो राजा के पास आती है और राजा को वो फल देती है। राजा उस फल को तुरंत हाँप लेता है कि ये तो वही फल है और उसे सारी जानकारी हो जाती है कि जो फल मैंने अपने पत्नी को दिया था, जो मुझे इतनी प्रिय है, उसे प्रिय कोई और है, और जिसने उसको दिया उसको प्रिय कोई और है। उसका सारा भ्रम टूट जाता है, अपनी पत्नी को सजा देता है वो और अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को सारा राज्य सौंप कर स्वयं संन्यास ले लेता है, यह जानकर कि इस संसार में जिसको मैंने मेरा कहा उसी ने धोखा दिया। इस संसार में मेरा जिसको भी कहो वो अंततोगत्वा दुख का ही कारण बनता है। विक्रम संवत मुरलियों में आता है, वहीं से आसपास चालू होता है। इस तरह राजा भर्तरि, जिसने कभी अपनी पत्नी को देखकर सौंदर्य शतकम लिखा था, सौंदर्य शास्त्र का एस्थेटिक्स का अभूतपूर्व ग्रंथ द 100 वर्सेस ऑन ब्यूटी, फिजिकल ब्यूटी, वही भर्तरि संसार का त्याग कर देता है, सन्यासी बन जाता है और बाद में वैराग्य शतकम लिखता है। वैराग पर लिखा गया सर्वोत्तम ग्रंथ, जिसकी एक एक लाइन वैराग से ओतप्रोत है। आप चाहे तो उसका हिंदी, इंग्लिश या कोई ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं। मनुष्य जिसे जिसे अपना कहता है, वहां से अंततो गत्वा दुख ही प्राप्त होता है। आज सुबह की अव्यक्त वाणी, बाबा ने कहा जितने मेरे हैं संसार के वो सब क्या कर देते हैं, मैला, और मेरा बाबा ही एक है जो क्या करता है, माला माल। इस जगत में जहां जहां मन लगाएंगे वहां वहां से धोखा ही प्राप्त होता है। इसलिए विवेक, डिस्क्रिमिनेशन, विजडम, देखना है हम कहां व्यर्थ के जंजालों में फंसे हैं और स्वयं को वहां से बाहर निकालना है। और हर परिवर्तन से पहले हर व्यक्ति को दर्द से गुजरना होगा, पीड़ा से। एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है तो दर्द होता है, किसी दूसरे को जन्म देने के लिए दर्द होता है, पर उससे भी अधिक पीड़ा स्वयं के गर्भ से स्वयं को जन्म देने में होगी। एक जन्म हमें स्वयं ही देना पड़ेगा, स्वयं को अपने ही ज्ञान के गर्भ से अपना ही जन्म, और इसमें भी एक शॉक, प्रसव पीड़ा, लेबर पेन्स से गुजरना होगा। जब तक जीवन में क्रांति नहीं तब तक कोई परिवर्तन नहीं। एक क्रांति होनी चाहिए, शॉक, हंसते खेलते गाते परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन होगा जब एक धक्का लगेगा, जैसे भर्तरि को लगा। और उसके बाद ही उसे इस संसार से इतना वैराग्य आया। तो आज सुबह की अव्यक्त वाणी आप सब ने सुबह सुनी, उसके बाद शायद बहुतों ने पढ़ी भी होगी, तो हम शॉर्ट में उसे रिवाइज करेंगे, जितना हो सके उसकी सारी पॉइंट्स। केवल 4 बातों में उसको हम रिवाइज करेंगे, 1, 2, 3 एंड 4। नीचे से चालू करते हैं 4। शिवरात्रि के 4 अर्थ इस मुरली में हैं। पहला व्रत, दूसरा जागरण, तीसरा बलि और चौथा अर्पण, अक्क के फूल। मुरली की शुरुआत बधाइयों से, स्नेह के सागर से, शिवरात्रि, हीरे जयंती, हीरे तुल्य जयंती, इन सब के से होकर मुरली वहाँ तक आती है कि भक्त भी इसे मनाते हैं। और भक्त के लिए बाबा ने कहा वो शुद्ध होते हैं, सात्विक होते हैं, सच्चे होते हैं, शुद्ध सात्विक सच्चे, और वो भी मनाते हैं। कॉपी की है पर वो भी दुखों में दुखी नहीं होते उनकी इस श्रद्धा की वजह से। तो सबसे पहला है व्रत। कौन सा व्रत है? पवित्रता, वहां एक दिन के लिए, यहां जन्म के लिए। अपनी प्यूरिटी की प्रतिज्ञा को रोज अमृत वेले रिवाइज करना है बाबा के सामने, स्वयं को याद दिलाना है और रिवाइज करना। कल से यह कार्य चालू होगा। ये भट्टी आज यहां पूरी होगी, आप आज शाम को या शायद कल यहां से चले जाएंगे और परसों से या फिर 15 तारीख से अपनी एक व्यक्तिगत भट्टी चालू करनी है, जिसमें टॉपिक आप स्वयं चूज करो किस पर कार्य करना है। कोई एडिक्शन, अमृत वेला, प्यूरिटी और एनीथिंग। तो सबसे पहला व्रत कौन सा है? प्यूरिटी का व्रत। सभी अपनी डायरी खोलेंगे और प्यूरिटी का कोई भी एक चित्र बनाएंगे। प्यूरिटी का चित्र, जो चीजें एब्स्ट्रैक्ट होती है, अमूर्त, अगर उनका चित्र बनाना है तो उनके जैसा क्या है उसका चित्र बनाना है, सिंबॉलिक। जैसे कमल प्यूरिटी का प्रतीक है और हंस प्यूरिटी का प्रतीक है और पिकॉक प्यूरिटी का प्रतीक है और क्या, माइक दे दो, क्या स्मॉल बेबी, छोटा सा शिशु बाबा महात्मा कहते हैं, और कोई ऋषि और क्या राखी, ओके और हाँ मंकी, देवताएं, चित्र निकालेंगे। ड्रॉ द डायग्राम ऑफ प्यूरिटी, एनीथिंग। पहले दिन भी कहा था सुनते सुनते लिखना है, लिखते लिखते सुनना है, और सुनते सुनते योग लगाना है। तो पहला टास्क है हर दिन अमृत वेला अपनी प्यूरिटी की प्रतिज्ञा को रिवाइज करना है। ये इंपॉर्टेंट टास्क है। तो बाबा ने क्या कहा, ये है व्रत। दूसरा है जागरण, अवेकनिंग। एक शिष्य अपने गुरु से कहता है आपने मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर लाया, आज शिक्षा पूरी हुई, जाने का दिन है, प्रेम आनंद अश्रु बह रहे हैं, मैं आपको क्या दूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है देने के लिए, आपने मुझे जो दिया, जो आत्म साक्षात्कार करा दिया, स्वयं मुझको मुझसे मिला दिया। रोता है क्या दूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। गुरु कहता है अगर तुम्हें मुझे कुछ देना है तो एक ही चीज दो, वापस अंधकार की ओर मत लौटना, वापस विस्मृति में नहीं जाना। जागृत रहना, अलर्ट रहना, अटेंटिव रहना। तो जैसे आप तीन दिन से यहाँ अलर्ट है, अटेंटिव है, कल से अब या परसों से जैसे ही उस दुनिया में जाओगे तो वही अटेंशन, वही अलर्टनेस मेंटेन करके रखना है किसी भी तरह से। इसलिए जो नोट्स लिखे हैं, जो डायग्राम बनाए हैं, ये बहुत काम आएंगे। इसको रिव्यू करते रहना, इसको खोल के देखते रहना। जागरण। तीसरा है बलि। किसकी बलि दो? मैं की, मैंने किया, मैं करता हूं। अरेबियन एक कहानी है जिसमें एक व्यक्ति मूर्तिकार होता है और उसे पता चलता है कि 10 दिन के बाद मेरी मृत्यु होने वाली है, मृत्यु का देवता आने वाला है मुझे ले जाने। वो एक युक्ति रचता है, अपने ही जैसे 9 मूर्तियां तैयार कर देता है और 10वां वो खुद खड़े हो जाता है, ताकि मृत्यु का जो देवता आएगा वो कंफ्यूज हो जाएगा कौन सा सही व्यक्ति है, क्योंकि उसकी मूर्ति अप्रतिम है। इतनी सुंदर मूर्ति और कोई नहीं बना सकता। वो एज इट इज खुद की ही मूर्तियां, 9 मूर्तियां तैयार करता है और 10वीं वो खुद। काल्पनिक कहानी है। मृत्यु का देवता आता है, देखता है सारे 10 लोग है ये, तो लेके तो एक को जाना है, किसको लेके जाऊं? और वो मृत्यु को तारीफ करता है, आहा कितनी सुंदर मूर्ति है। परंतु अचानक कहता है कि ये जो एक मूर्ति है ना, इसमें बड़े दोष है, खोट है। जैसे ही वो मृत्यु का देवता ये कहता है, इस व्यक्ति को कहता, वो जागता है और कहता है, ऐसे कैसे हो सकता है, मेरी मृत्यु में दोष हो ही नहीं, मूर्ति में दोष हो ही नहीं सकता। मृत्यु का देवता कहता है, यही दोष है, चलो साथ में। दिस इज द प्रॉब्लम। मैं अभी सभी आंखें बंद करके पिछले 6 मास में ऐसी एक सेवा के बारे में सोचेंगे जो हमने की है। याद करो कौन सी एक सेवा हमने की है, कोई भी एक सेवा, बड़ी सेवा। आंखें खोलेंगे, डायरी में लिखेंगे वो सेवा, कुछ भी हो सकती हो, एनीथिंग जो सेवा आपने की। नीचे अपना नाम भी लिखेंगे, सेवा ऊपर नीचे नाम, और फिर अपने नाम को कट कर दो, नाम को क्या कर दो, क्रॉस कर दो। सेवा हुई परंतु मैं नहीं, अपने आप हुई, कराने वाले ने कराई, मैं निमित्त हूं। सेवाएं करना पर नाम हटा देना, कर्तव्य हो कर्ता गायब अर्थात कर्मयोगी। तो मैं यहां तक कि मैंने किया, मेरी विशेषताएं, ये अगर आ गया तो ऊपर से फ्लो कम हो जाएगा अपने आप। इससे पहले भी सुनाया था, यज्ञ का ही उदाहरण है। जब जब किसी में अहंकार आया, वह अहंकार ही उसे ले डूबा। आप सब जानते होंगे कि दादा लेखराज को ब्रह्मा नाम कैसे दिया गया या किसने दिया, किसने दिया? पिहू ने दिया। बाबा को साक्षात्कार हुए, सिंध हैदराबाद में। बाबा कश्मीर चले गए समझने के लिए क्या हो रहा है। वापस आए तो हैदराबाद गए और वहाँ एक नया पाठ चालू हुआ, एक पुष्प नाम की 15 साल की कन्या थी जिसके तन में शिव परमात्मा आने लगे और उसने अपने आप को कहा, अब तक जो कन्फ्यूजन था ये हो क्या रहा है, यहाँ थोड़ा क्लियर हुआ कि जो आ रहा है वो ऑलमाइटी है। और उस तन में पिहू अर्थात प्रिय या पिता, उस तन में शिव बाबा आने लगे। शिव बाबा नाम नहीं था, ऑलमाइटी नाम था। और पिहू के तन में आकर उस ऑलमाइटी ने कहा कि ये जो दादा लेखराज है ये है ब्रह्मा, प्रजापिता ब्रह्मा, आज से इसका नाम होगा। बाबा के तन में आकर बाबा स्वयं ये नहीं कह सकते कि मेरा नाम ब्रह्मा, इसलिए ये पाठ किसी और के द्वारा चला, ये एक कारण। और दूसरा कारण था वो जो कन्फ्यूजन, ये हो क्या रहा है, ये कौन कह रहा है, तो वो ऑलमाइटी आ रहा है। और ब्रह्मा बाबा को इतनी खुशी हुई कि जिस भगवान को पाने के लिए मैं जन्म जन्म से भटक रहा था वो भगवान मुझे मिल गया। उस पिहू को, उस पुष्प नाम की जो कन्या थी, पुष्पा या पुष्प उसको कहते थे, उसको इतना सजाते थे, उसको मुकुट पहनाया हुआ, चित्र भी आपने देखा होगा, पिहू पुष्प बैठी है और मम्मा और बाबा सामने खड़े हैं, बैठे हैं। तो बाबा उसको बहुत सजाते थे, 36-56 प्रकार के भोग सब कुछ उसको देते थे। और उस पुष्प को यह अभिमान हो गया कि भगवान का मैं चुना हुआ रथ हूं, भगवान ने मुझे चुना है और ये सब मेरे सेवाधारी है, मम्मा ब्रह्मा दादा लेखराज ये सब। उसका पाठ कुछ समय चला, 40s 1-2 कुछ साल शायद चला होगा। और उस तन द्वारा जो मुरली चली, जो चली मुरलिया, वो मुरलिया ज्ञान से रिलेटेड नहीं है, योग उसमें कम है, केवल धारणाओं पर मुरली है। अभी अभी कुछ दिनों पहले एक पीहू की मुरली चली थी, कौन सी तारीख, 14 कौन सा, 11 अप्रैल, अभी जो 11 अप्रैल में मुरली चली थी साकार, वो पीहू की वाणी थी जिसमें एक एक लाइन पावरफुल है, केवल धारणाओं की वो मुरली है 15। ये जो चली थी जिसमें 12 पैराग्राफ्स थे, एक एक पैराग्राफ पावरफुल। तो ये जो पुष्प थी उसको अहंकार आ गया कि भगवान मेरे तन में आता है और ये सब मेरे सेवाधारी है। और धीरे धीरे हमने सुना है कि वो ये सारा पैसा और ये सारे हीर सोना अपने लौकिक घर भेजने लगी अपने भाई द्वारा। यज्ञ का एक भी पैसा लौकिक घर भेजना अर्थात महापाप। और धीरे धीरे बाबा को ये बात जब पता चली इनडायरेक्टली, तो वो बहुत चिढ़ गई और वो यज्ञ छोड़कर कुछ लोगों को चली गई लेके साथ में, और एंटी ओम मंडली से साथ जुड़ गई और बाबा और मम्मा की बहुत बहुत ग्लानी की। और फिर उसको डिप्रेशन हुआ, मानसिक बीमारियां हुई और बहुत दर्दनाक मृत्यु हुई। ये पाठ जो चला वो केवल दादा लेखराज को ब्रह्मा नाम देने के लिए चला था, पिहू का। तो जब भी अहंकार आता है तब क्या होता है, पतन। मैं ये भी एक बहुत अद्भुत है, जे कृष्णमूर्ति को चुना गया था, एनी बेसेंट ने चुना था बचपन से ही कि बुद्ध की पदरामणी इन दो बालकों में से किसी को होगी, किसी में होगी, जय कृष्णमूर्ति या उसका भाई, छोटों को दोनों में से ही, दोनों को ट्रेन किया, एक की तो मृत्यु हो गई, जय कृष्णमूर्ति जिड्डू कृष्णमूर्ति को बड़ा किया, पूरी सभा थी जिस सभा में यह अवतरण होने वाला था, परंतु जय कृष्णमूर्ति ने डिनाय कर दिया, मैं नहीं, क्योंकि अगर कोई मुझ में प्रवेश करता है तो मेरा अपना अस्तित्व का क्या होगा, वो सब उसका चलेगा। ये एक बहुत बड़ी कहानी है, उसने तो यहां तक धीरे धीरे थियोसॉफिकल सोसाइटी यानी बेसेंट को ही छोड़ दिया धीरे धीरे। कोई शक्ति प्रवेश कर रही है, उस शक्ति को समाना, फिर अपना मैं नहीं चलेगा, वो शक्ति सब करेगी, इसलिए ब्रह्मा का यह बहुत बड़ा त्याग भी है, अपने मैं को पूरी तरह मिटा दिया। हॉलैंड की वो सभा, ही जस्ट डिनाइड जय कृष्णमूर्ति। तो जहां जहां मैं आएगा और अहंकार आएगा, मैंने किया आएगा, वहां चेतना गिरेगी। तो सबसे पहला व्रत सुबह सुबह रिवाइज करना है, दूसरा जागरण अलर्ट रहना है। अलर्ट रहने की विधि है मैं आत्मा हूं, रोज का टारगेट रखना है 500 और धीरे धीरे उसको 1000 तक ले जाना है, फिर 150, 1500, 2000 बढ़ाते जाना है। बलि मैं को ही शिव को अर्पित कर देना। चौथा है अक के फूल, मुरली में आया है शिव के ऊपर क्या चढ़ाते हैं, अक के फूल, तुम्हें क्या चढ़ाना है, व्यर्थ संकल्प। व्यर्थ संकल्प होंगे तो मुरली में आया है योग का बल, ज्ञान का चिंतन, ये कहेंगे मुरली बहुत अच्छी थी, मुरली बहुत अच्छी थी, हमको बहुत अच्छी लगी, परंतु मनन नहीं होगा, चिंतन नहीं चलेगा। अगर व्यर्थ भरा है मन में, इसने ये किया, उसने वो किया, ये ऐसे है, ये लोग ऐसे करते, ये वैसे करते हैं, दूसरों का पास्ट हमें याद है, परंतु उनके पाप गिनाने से हमारे अपने थोड़ी ना कम हो गए। इसलिए व्यर्थ को समर्थ में कन्वर्ट करने की विधि है क्रिएटिव एक्टिविटीज। क्या करना है, अपने आप को एंगेज करके रखना है। जैसे एक क्रिएटिव एक्टिविटी है रोज की जो मुरली है उसकी स्टडी करना, उसमें से कुछ होमवर्क निकालना, समझना उसे क्या है। तो ये चार बातें हैं, व्रत लेना, जागरण करना, बलि और अक के फूल, ये थी चार बातें। फिर है तीन बातें इस मुरली से, तीन बिंदु, सुबह भी डायग्राम बनाया था, अभी फिर से बनाएंगे, 3 point डॉट डॉट डॉट, तीन डॉट बनाओ एक ही लाइन में, पहले डॉट के नीचे आत्मा, दूसरे डॉट के नीचे बाबा, तीसरे डॉट के नीचे ड्रामा। इस मुरली में एक और एडिशन है, आत्मा बिंदु बनो, बिंदु देखो, बिंदु समझो, बिंदु लगाओ। जो चीज परेशान कर रही है, हैरान कर रही है, उसको यहीं ड्रॉप कर देना है। सोचो इमेजिन करना इस कैंपस में ही मुझे वो ड्रॉप करके चले जाना है, अभी यहाँ की सीमा रेखा के बाहर वो बातें अब जानी नहीं चाहिए यहाँ से जाने के बाद, जस्ट ड्रॉप इट। वो जो अभ्यास दिया है आपको, वो मार्बल है आपके पास अभी, उस मार्बल का अभ्यास करना है, उसको हाथ में लेना, अगर कोई चीज़ भारी कर रही है उसको हाथ सामने करके पकड़ के रखना, जब तक हाथ दुखे ना, एक मिनट, दो मिनट, पाँच मिनट, दस मिनट, हाथ दुखने लगे, दर्द होने लगे, सोचना वो निगेटिविटी, वो बात अभी मेरे हाथ में है, और फिर जब असहनीय हो जाए गिरा दो और फिर हाथ नीचे करो। तो ये दर्द और वो पेन, वो बात, ये जुड़ जाएगा। और स्वभाव हमारा ये है कि जो दुखद संवेदनाएं हम उससे दूर जाना चाहते हैं, तो वो फिर से हम याद नहीं करेंगे। जैसे पावलोव ने मेडिकल में शुरुआत में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं, पावलोव्स एक्सपेरिमेंट, बायोलॉजिकल कंडीशनल रिफ्लेक्स के ऊपर। एक कुत्ता है, उसको भोजन खिलाया, लार टपकने लगी, उसी समय बेल बजाई, भोजन सामने बेल बजी, भोजन खाया, भोजन सामने बेल बजाई, लार टपकने लगी, भोजन खाया, फिर भोजन हटा दिया, घंटी बजाई, लार फिर भी टपकने लगी, क्योंकि उसके माइंड ने ये जोड़ दिया, घंटी और भोजन को जोड़ दिया, घंटी बजी मतलब अभी भोजन आ रहा है, लार टपकने लगी जबकि भोजन है ही नहीं। दिस इज कॉल्ड कंडीशनल रिफ्लेक्स। इस पर बहुत काम किया है लोगों ने, इस पर शुरुआती दिनों में मेडिकल के, मेडिकल का जब इम्प्रूवमेंट बर्थ हो रहा था, ड्यूरिंग द इन्फेंसी ऑफ मेडिकल साइंसेस, एक व्यक्ति जिसे सिगरेट पीने की आदत है, चेन स्मोकर, चेन स्मोकर उसको कहते हैं, एक सिगरेट अभी पूरी बुझी भी नहीं कि तो दूसरी रेडी है, दूसरी तीसरी कंटिन्यूअस एक के बाद एक, इसको कहते हैं चेन स्मोकिंग। स्मोकिंग तो करना है, पर जहां स्मोकिंग रखी है सिगरेट, वहां हाथ लगाते ही करंट लगता है, तो करंट और स्मोक दोनों जुड़ गए, हाथ लगाया तुरंत करंट लगा, पिया, वो स्मृति है अभी, सिगरेट और करंट, इलेक्ट्रिक करंट फिर से जुड़ा, धीरे धीरे एक रिफ्लेक्स क्रिएट हो गया और व्यक्ति स्मोकिंग छोड़ देता है। तो ऐसा कुछ क्रिएट कर देना है कि उस बात के साथ हमने क्या कर दिया, उस मार्बल को ले लिया, पकड़ के रखा, पकड़ के रखो उसको, दुखने तो हाथ, और जब बहुत पीड़ा हो वो पीड़ा और वो बात जुड़ जाए और गिर जाए। This is one of the methods of de-addiction. तो बिंदी, कितनी बिंदी, तीन, इन तीनों बिंदियों को जोड़ दो, एक लाइन लगा कर दो, इसको कहते हैं थ्री पॉइंट मेडिटेशन, या फिर आप एक कार्ड बना सकते हो फुल स्टॉप का, एक स्टैंप, स्टैंप होता है ना, स्टैंप, फुल स्टॉप का स्टैंप बना दो, जब भी कोई डिस्टर्ब करे वो चीज को लिखो और वहां स्टैंप लगा दो, फुल स्टॉप, या ड्रामा का स्टैंप, व्यक्तिगत, खुद अपना एक स्टैंप बना के रख दो, कितना खींचोगे, और वो चीजें हो गई, खत्म हो गई। हमारा एक पेशेंट है जिनकी युगल हमारे पास एडमिट थी लगभग 2010 में, बहुत सीरियस थी, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस थे और शरीर छोड़ा था, आज तक भी वो दादा जब भी मिलेंगे नक्की पर चलते हुए कहीं पर भी, वो अपनी पत्नी को याद करते हैं। क्या वो बच सकती थी, उसी के बारे में कुछ ना कुछ पूछते हैं, भूल मतलब अभी उनकी 80 के ऊपर उम्र है, पर वो उस दर्द से, उस शॉक से अब तक निकले ही नहीं है, वही 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 है, वो गाड़ी वहीं रुक गई है, स्वीकार ही नहीं किया है कि वो चली गई, कितना खींचेंगे, फुल स्टॉप, उसको रोक दो आप। वो आत्मा जहां चली गई उसको जाने दो। जिस आत्मा जो हमारे साथ थी और अचानक शरीर छोड़ दिया, हम उसके लिए दुख मनाते रहते हैं। वो आत्मा जहां कहीं होगी नए शरीर में, उसको हमारे दुख के वाइब्रेशंस पहुंचते होंगे। कम से कम उसका ये जो नया जन्म है, ये ठीक से उसको रहने दो, जाने दो आगे। हम दुखी होते रहेंगे, उदास होते रहेंगे। वो पालने में होगी तो जो बच्चा होता है ना, रोता है, क्यों? मे भी उसको सम वाइब्रेशंस आ रहे हैं कहीं से। तो पास्ट इज पास्ट, स्टॉप। हमारे जब हम मुंबई में थे, एक हॉस्पिटल में एक सर्जन थे, बहुत फेमस सर्जन। उनका एक ही बेटा था जिसको उन्होंने डेंटिस्ट बनाया, डेंटल की पढ़ाई के लिए, BDS के लिए लंदन में था। बेटे का फोन आया कि पिताजी मैं पास हो गया हूँ फाइनल एग्जाम में, मैं घर आ रहा हूँ। फोन रखा, 5 मिनट में दूसरा फोन आया, योर सन इज डेड, एक्सीडेंट। उनको समझ ही नहीं आया, मतलब करना क्या है और बोलना क्या। पूरा वो टोटल शॉक में चले गए, वो हमारे सर जो थे, उनको मतलब पूरा सदमा जिसको कहते हैं, इतना शॉक में गए कि कितने हफ्ते तक उन्होंने मतलब बात ही नहीं की, कुछ समझ ही नहीं आया। ये इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू एक्सेप्ट। अभी बात की, बस 5 मिनट में दूसरा फोन आ गया। टेलीफोन बूथ से उसने बात की, बाहर निकला, एक कार ने उड़ा दिया, वहीं ऑन द स्पॉट डेथ। जीवन की घटनाओं को स्वीकार करने का सामर्थ्य, शक्ति हो और तैयारी भी हो, क्योंकि अचानक कुछ भी हो सकता है। जिसको हमने अपना संसार बना रखा है, सपोर्ट बना के रखा है, अगर वो चला जाए तो पास्ट इज पास्ट। तो 3 अर्थात 3 बिंदु, 2। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज 2। 2 अर्थात 2 प्रकार के मैं और 2 प्रकार के मेरा। एक मैं जो है वो साधारण है, मैं शरीरधारी हूं, देहधारी हूं, और दूसरा महीन है, मैंने ये किया, मैंने वो किया। पहला मैं मेरा जो मैला करता है, और दूसरा मेरा जो मालामाल बनाता है। सभी अपना हाथ यहां रखेंगे, कहेंगे नहीं पर अनुभव करेंगे, मेरा बाबा। Close the eyes and experience. Feel it deeply. Haath niche. हमारे विचारों के साथ क्रिया जुड़ जाए। क्या जुड़ना है? क्रिया, हैंड जेस्चर्स, तो उसका इफेक्ट एम्प्लीफाई हो जाएगा। स्थान में जाते हैं, स्थान के साथ किसी क्रिया को जोड़ दो, इफेक्ट एम्प्लीफाई बढ़ जाएगा। तो ये है 2, फिर है 1। 1 में बहुत सी बातें हैं। पहला 1 है एक वरदान। इस मुरली में लास्ट में बाबा ने एक वरदान दिया है, सदा उड़ती कला भव। तो देखना है मेरी कौन सी कला है, ठहरती, चलती, दौड़ती चढ़ती या उड़ती या फिर गिरती। 5 साल पहले जहां थे उससे अभी और भी पीछे चले गए, संबंध ही टूट गया। जैसे ज्ञान योग धारणा तपस्या किसी और ही जगत में चले गए, जिस जगत का इस ब्राह्मण परिवार से कोई लेना देना ही नहीं है। एक ऐसे जगत में भटक रहे, क्या ज्ञान क्या योग कुछ नहीं, जीरो। हमने ऐसा कितनी आत्माओं के साथ देखा है, भटक गए और उन्हें यह एहसास ही नहीं है कि हम भटक गए। उनको लग रहा है ये ठीक चल रहा है। उड़ती कला भव, मुझे आगे जाना है। आज जहां हो कल इससे आगे होनी चाहिए। एवरी टुमारो शुड फाइंड मी अहेड ऑफ टुडे, एवरी टुडे शुड फाइंड मी अहेड ऑफ यस्टरडे। हमारी रेस किसी व्यक्ति से नहीं है, स्वयं से है, खुद से। आगे आगे आगे। वो मिल्खा सिंह के लिए दिखाते हैं, 3-4 बार तो रिजेक्शन हो गया मिलिट्री में, फिर भी डटे रहे। बचपन में माँ बाप को मरते हुए देखा, और बाद में सारे रिकॉर्ड तोड़े। उनके ऊपर एक मूवी भी बनी, उस पैसे उस मूवी का कॉपीराइट उन्होंने 1 रुपए में बेचा, 1 रुपी। वो चाहते थे तो बहुत पैसा कमा सकते थे, जस्ट 1 रुपी। आगे आगे और आगे, अपने आप से रेस है, किसी और से नहीं। एक फिर से डायग्राम बनाएंगे, मेरा कल का वर्शन कैसा होगा। 2 कॉलम करो, टुडेज ओल्ड सेल्फ न्यू सेल्फ। जो न्यू सेल्फ है उसका कॉलम छोड़ के रख दो, सोचना उस पर कि मैं अपने आप को क्या देखना चाहता हूँ, उसमें क्या क्या होनी चाहिए, कौन कौन सी बातें, जैसे अमृत वेला, एक्यूरेट या रेगुलर, सेकेंड मुरली चिंतन, थर्ड अनडिस्टर्ब स्टेज, नो क्राइंग नो रोना रूसना नाराज होना। ओल्ड सेल्फ न्यू सेल्फ अपडेटेड वर्शन, ये कॉलम बना के रखो, उसको बाद में भरना। तो सबसे पहला है उड़ती कला भव, 1 वरदान। दूसरा है 1 स्वमान। कौन सा स्वमान है मुरली में? मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मुझ में सारी शक्तियां हैं। पर जितना बड़ा स्वमान उतने अधिक पेपर भी आएंगे, नहीं तो स्वमान का प्रूफ कैसे होगा। तो प्रैक्टिस करनी है, स्वमान को रिपीट नहीं, चिंतन करना है उसको। रिपीट तो एक ही चीज है करने की, मैं आत्मा हूं। हमारे ओपीडी में माताएं आती है, अपनी डायरिया दिखाती है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, 1 लाख बार हो गया लिखकर, 2 लाख बार हो गया, कितना अच्छा है, समय को सफल कर रही है। नहीं तो समय कितना व्यर्थ जाता है, जस्ट राइटिंग एंड राइटिंग एंड राइटिंग। हम जब देखते हैं पेशेंट्स एडमिट होते हैं तो उनके साथ सेवाधारी कोई ना कोई माता होती है। कई बार जैसे सेंटर की बहनें एडमिट हो गई, सेंटर की कोई माता, वो माता अपने डायरी में लिखती रहती है, डायरी 3 कॉलम, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, चालू है लिखना। शांतिवन में एक छोटा सा लड़का आते रहता है, वो थोड़ा सा इतना मेंटली थोड़ा सा कमजोर है, उसे ज्यादा समझ नहीं आता है, पढ़ा लिखा नहीं है। उसको एक मोबाइल दे दिया है, प्लास्टिक का मोबाइल है, ऐसे ही नकली डमी, तो वो क्या करते रहता है, हेलो हाँ शिव बाबा, हाँ 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 ठीक है मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं, ऐसे बात करते रहता है, दिन भर बात करते रहता है, इधर जो जो होता है वो उधर बताते रहता है। उसके पास बुद्धि नहीं है, स्कूल नहीं भेज सकते उसके पेरेंट्स, मेंटली चैलेंज्ड है, और उसको ये समझ में आ गया बस, वो मेंटली चैलेंज्ड है या हम, वो भी एक प्रश्न है। एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है आपका और बाबा का, एक कैसा ग्रुप बनाएंगे, अकेले का, किसी को ऐड करो और उसको निकाल दो, आजकल तो बिना किसी को ऐड भी ग्रुप बनता है, और उसमें अपडेट करते रहना ग्रुप में, अभी हम यहाँ पर है, अभी हम भट्टी के लिए आए हैं, ओके सी यू बाय, अभी मैं यहाँ जा रहा हूँ, अब तक ठीक है बाय, हेलो वेयर आर यू, अभी ये चल रहा है, कीप ऑन अपडेटिंग हिम, उसमें टाइप करते जाना, तो आपके सारा कॉन्वर्सेशन उसमें सेव रहेगा, ऑल चैट्स, ये भी बहुत काम आएगा। तो दिस इज अनदर टेक्निक टू रिमेन कनेक्टेड विथ हिम। तो पहला बताया वन वरदान, दूसरा स्वमान, तीसरा वन है अकेला, मुरली में आया अकेला नहीं समझना आपको, दिलवाड़ा और दिलाराम की बात की है, बाबा मेरे साथ है, गीत में भी क्या था, साथ रहेंगे साथ उड़ेंगे, गीत गाया ना मुरली पर, यही है वायदा, अकेले शिव संगी हो जाना है, एकला चलो रे परंतु शिव संगी, एकांगी एंड शिव संगी, इस दुनिया में किसी को अपना साथी नहीं बनाना है। और चलते जाना है, रुकना मना है, सुन ओ राही रुकना मना है, रुकना ही नहीं है, चलते जाना है। तो उसको साथी बनाना, साथ रहना, साथ चलना। तो ये थी आज की मुरली, बीच में नंबर वन नंबर वार भी आया है, बीच में विजय जन्म सिद्ध अधिकार है वरदान में भी आया है, ना मालूम ये शब्द हटा देना है, ये शोभता नहीं। तो हमने आज चार बातें देखी, वन टू थ्री फोर, वन में एक स्वमान, एक वरदान और अकेला, टू में दो प्रकार के मैं और दो प्रकार के मेरा, निमित्त भाव को लाना है, थ्री में थ्री बिंदु, और चार में शिवरात्रि के चार अर्थ जो शिवरात्रि में मनाए जाते हैं, परंतु वो कर्मकांड जैसा ना हो। एक व्यक्ति था बहुत अमीर, उसके पास एक चंदन की लकड़ी थी जिससे वो दांत घिसता था, पर ऐसा पीछे जाके घिसता था, दांत साफ करता था, किसी को पता नहीं था उनके बेटों को कि ये क्या करते पिताजी, कुछ तो करते हैं पर वहां पर। फिर पिताजी की मृत्यु हो जाती है तो पीछे देखते एक बार वहां लकड़ी रखी है, वो सोचते हैं लकड़ी क्या है, जरूर कुछ रहस्यमयी लकड़ी है ये, तो सोचते हैं इसका क्या अर्थ हो सकता है क्योंकि पिताजी की है, तो वहां पर थोड़ी सी जगह कर देते हैं और उसको साफ कर देते हैं, लकड़ी को रखते हैं। फिर धीरे धीरे पीढ़ी आगे बढ़ती है, बहुएं आती है, वो उसकी पूजा चालू करती है धीरे धीरे, उनको लगता है पता नहीं ये लकड़ी पूर्वजों की है। फिर घर बदलता है, सोचते हैं छोटी लकड़ी क्यों रखे, फिर बड़ी लकड़ी लेके आते हैं मार्केट से, और धीरे धीरे और घर बड़ा होता है, पैसे ज्यादा आते हैं तो मंदिर बनाया जाता है, और वहां पर एक बहुत बड़ी लकड़ी रखी जाती है, और किसी को पता नहीं वो लकड़ी क्या है, वो पिताजी उससे दातुन करते थे, वो परंपरा चल पड़ी। अब वहां एक मंदिर है, फिर बाद में वहां एक पुजारी रखा है, वो पुजारी एक लकड़ी की पूजा करता है, वो किसकी लकड़ी है क्या लकड़ी है कुछ पता नहीं, बस पूजा चालू है। इसको कहते हैं कर्मकांड, परंपरा। क्यों करते हो? पूर्वज करते थे। कब से कर रहे हैं? सदियों से, परंपरा से चल रहा है। इसलिए भक्ति मार्ग के त्योहार ऐसे ही आगे बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए। क्यों करना है किसी को कुछ पता नहीं। तो सारे त्योहारों का रहस्य बाबा यहां बताते हैं। तो शिवरात्रि में चार चीजें, पहली व्रत, दूसरा जागरण, तीसरा बलि, चौथा अक के फूल। तो ये थी आज की अव्यक्त मुरली। अच्छा, ओम शांति।